कहा भी बरसा बरसा हमारे हाथ की बात थोड़ी है, तो राजा वहां रोने लग गए प्रजा के दुख को देख कर के थे कि देखो हमारी प्रजा तो मर जाएगी उनके बिना, फिर हम
राजा भी किसके रहे।
तो हम चाहे राजा न रहे उसके लिए कोई चिंता नहीं है, किंतु आप कृपा करके की और बरसा तो बरसा दी। उसने कहा कि भी हमारे सामर्थ्य की बात तो नहीं है, किंतु हम जैसा करते हैं। तकड़ी को हाथ में लेकर के की और कहा कि ये तकड़ी तराजू, यदि इस दांडी के द्वारा हमने किसी का अधिक नहीं लिया कभी और कम नहीं दिया है, तो या इस सतता के प्रभाव से बिजी सो अपने वर्षा सो करें। उसी वक्त वर्षा होने लगी और राजा घर पर वर्षा बरसती हुई कि मैं अपने घर पहुंचा। अब एक तुलाधर की बात जो आपको मैं बतलाता हूं, वो हुई हुई घटना वो महाभारत का विषय है कि एक जाजली नाम का ऋषि हुआ, उसने समुद्र के किनारे ऊपर जाकर के तपस्या करी, बड़ी भारी तपस्या करी। कैसी वो तपस्या थी कि एक वृक्ष के किनारे इस प्रकार से ध्यान के में वो मस्त हो गया। चिड़ियों ने सोचा कि ये कोई एक प्रकार से कोई ठूंठ है, तो उसके सिर के ऊपर अपने गुस्सा घाल दिया और गुस्सा घाल करके अंडे भी दे दिए। उसको ज्ञान हो गया कि ठीक है, चिड़ियों ने गुस्सा घाल दिया, कोई बात नहीं। और अपने ध्यान के वहां बैठे रहे, न खाना न पीना न सोना, ध्रुव की माफक एकदम अटल बैठे रहे। ध्रुव जी तो खड़े होकर एक पर से उन्होंने सूर्य तपस्या की, एक पर से खड़े रहे ये तपस्या की और वो बैठ करके तपस्या की। फिर जो पक्षियों का जो जोड़ा है वो एक प्रकार से बहुत दिन तक रहा, जब अंडे उसके बीच के वहां दिए हुए फूट गए और उसमें बच्चे निकले और उन बच्चों को चूहा पानी देकर के बड़े कर दिए, तो ये बड़ा जो जोड़ा है आदि का वो उड़ गया। उड़ करके फिर छोटा जो उनका बच्चा है ये पलते रहे, पलते पलते आंख के वहां बड़े हो गए। तो एक दिन उड़ गए, दो दिन नहीं आए, तीन दिन नहीं आए, फिर कभी आ जाते पांच सात दिन से, फिर आंख के वहां महीनों तक भी ऐसो नहीं आए। तब जाजली ने सोचा कि अब दूसरा जोड़ा भी यहां से चला गया, कि दूसरे दिन अपना प्रबंध कर लिया है, तो अपने सिर के ऊपर जो बोझा था बाहर ने जो गुस्सा लगाया था पक्षियों ने, उसको उठा करके जमीन पर गिर दिया। उसमें कोई न अंडा है न कोई चिड़िया है, कुछ भी नहीं, और उसके मन में अभिमान आ गया उस जाजली ऋषि की, क्या कोई मेरे समान तपस्या कर सकता है कि महीनों तक एक प्रकार से टट्टी ने पेशाब ने खाना ने पीना ने सोना और एक प्रकार से बैठ करके अपना समय बिताना, ऐसा कोई ध्यान कर सके। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, बोले सेज जाजली तू क्या अभिमान करता है, तुलाधर वैश्य जिस प्रकार की तपस्या करता है उसके मुकाबले में तुम्हारी तपस्या कुछ भी नहीं। ये सुनकर के वह तुलाधर वैश्य की खोज के वहां निकला काशी में, सब पूछता कि तुलाधर वैश्य की दुकान कौन से, लोगों ने बतला दी कि वो, तो तुलाधर वहां क्या करता था, ये खाने के पदार्थों को बेच रहा था, घी है चीनी है आटा है दाल है चावल और ये सब चीजें से बेच रहा था। उसने दूर से देख करके सोचा कि ये तो रस बेच रहा है और तुम्हारे को जो आकाशवाणी हुई को ऐसा भ्रम हो गया यहाँ तो कोई ऐसी दम वाली बात नहीं है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं देखते। ये सोच करके वो अपने उसकी दुकान से लौट गए। तो लौटा तब उसको मालूम आया, झट उसके पीछे दौड़ करके चरणों में गिर गया। बोले महाराज आप वापस कैसे जा रहे? जिस तुलाधर के विषय में आपको आकाशवाणी हुई थी वो तुलाधर मेरा ही नाम है, तो मेरे से भेंट किए बिना ही आप क्यों जा रहे? बोला भैया मैं तो यह बात देखी कि तुम रस बेचते हो, घी है तेल है इत्यादि सब, ये देख करके मैं जा रहा। बोले महाराज ये आपको देख करके नहीं जाना चाहिए, जिस काम के लिए आए हो आपको करना ही चाहिए, और ये जो एक प्रकार से क्रिय विक्रिय करना ये तो हमारा धर्म है। सभी कर्मों के विपरीत के बीच के वहां हिंसा तो होती है, ब्राह्मण लोग जग करते हैं कि उसमें हिंसा नहीं होती, वेदों के बीच के वहां तो इस प्रकार की हिंसा कहीं बसवा ही नहीं। वेदों का नाम लेकर के आप लोग ऐसा अपना करते हो, उसके ऊपर बड़ा असर पड़ा कि भाई एक प्रकार से तुमको कैसे मालूम हो गया कि एक मेरे द्वारा कुछ ऐसा काम हुआ। हाँ बोलो आपने तपस्या की थी और आपके मस्तक के ऊपर स्त्रियों ने गुस्सा डाल दिया था और आपके चित्त में अभिमान अगर आपने ताल ठोकी थी समुद्र के किनारे, तब आकाशवाणी हुई थी कि भी तुम्हारी तपस्या कुछ भी नहीं है जो तुलाधर वही तपस्या करता है। तो महाराज आप क्या तपस्या करते हो? बोले हमारे यही तपस्या है, किसी को जो सौदा बेचते हैं लेते हैं तो सम भाव रखते हैं, एक को अधिक एक को कम ऐसा नहीं करते। दूसरी बात यह है कि हम सत्य बोलते हैं मिथ्या नहीं बोलते। तीसरी बात यह किसी को धोखा किसी के साथ में धोखाबाजी नहीं करते हैं और अपना कर्तव्य समझ करके ये कर रहे हैं, कोई रुपयों के लिए हमारा ये काम नहीं। तो ये उसका भाव निस्वार्थ भाव देखा, स्वार्थ का त्याग देखा। बोला हे वही तुम्हारे में हमारी बहुत ही श्रद्धा हो गई, इतने के बीच में क्या देखते हैं कि आकाश मार्ग में पक्षी उड़े जा रहे हैं। तो तुलाधर वैश्य ने कहा कि यही पक्षी आपके मस्तक में गुसारा घड़ा था, आप इनको बुलाइए आवे और बुलाने थे आगे। तो उनको और भी विश्वास हो गया कि देखो इनको क्या पता ये पक्षी थी, और फिर बुलाने से आ जाएंगे इसकी बात तो पक्षी भी मानते हैं। फिर उन्होंने उनके पास उपदेश दिया और उन्होंने उपदेश दिया तो इतना उस कोटि का वो याद भी था, वो भी तुलाधर वैश्य के पास हो जाकर सीख कर। तो तुलाधर वैश्य बहुत ही उस कोटि का पुरुष है, वैश्य जाति। इसी तरह से क्षत्रिय जाति के वहां महाराज युधिष्ठिर, राजा जनक, राजा मानदाता, इनके नाम तो संसार में प्रसिद्ध है ही। और अशुपति नाम का राजा हुआ, उसके पास में ऋषि लोग शिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। एक दफे छह ऋषि इकट्ठे होकर के उस राजा के पास में आए, उनका बड़ा सत्कार किया राजाओं का, और वह सब कुलपति थे। कुलपति उसको कहते हैं कि जिसका 10,000 शिष्य हो, एक एक शब्दों की बड़ा एक विश्वविद्यालय चलता था। तो राजा ने सोचा भी इनको धन की आवश्यकता है, तो एक एक को रत्नों का थाल भर भर करके ला करके किया। उन्होंने इनकार कर दिया। राजा ने आदर कहा कि महाराज ये मेरा धन बड़ा पवित्र है, इसको आप इनकार कैसे कर सकते हो? साथ ये समझते हो कि भी राजा का धन है, राजा का धन है, तो इससे हमारे विद्यार्थी की बुद्धि खराब हो जाएगी। तो ये मेरा जो धन है बड़ा पवित्र है, मेरे पास में जो कुछ धन है वो सब पवित्र। राजा का धन अपवित्र क्यों होता है कि राजा के राज में पाप होते रहते हैं, उन पापियों का जो धन है उसे जो लिया जाता है वो महान ही अपवित्र होता है। इनको आपको ख्याल रखना चाहिए कि मेरे राज के बीच में कोई कलार की भट्टी नहीं, क्यों कि एक भी मनुष्य हमारे राज के मां मदरा पान करने वाला नहीं, तो भट्टी क्यों, भट्टी कैसे चले। तो बोला मेरे राज के मां कोई कसाई नहीं, कसाई क्यों नहीं है कि एक भी पुरुष हमारे राज में मांसाहारी नहीं, तो कसाई काम कैसे। हमारे राज के बीच के वहां कोई खानगिया में बेसा नहीं है, क्योंकि एक भी मनुष्य परस्त्री गमन करने वाला नहीं। और हमारे यहाँ कोई चोर नहीं है, हमारे राजभर में हमारे देश में कोई चोर नहीं, क्योंकि सभी सुखी हैं, किसी को चोरी का मौका आने नहीं देते। तो कहने का भी प्राय है कि ऐसे से राजा एक दिन के राज के वहां कोई एक पद मिथ्या धन के लिए आपके पास नहीं आए, आपके पास में सच्चा जो धन है वो हमारे को दो। आप महात्मा हो, आपके वहां ज्ञान है, तो हमारे को शिक्षा दो, उपदेश की बात दो। तो राजा उनको पूछने लगा कि आप कहाँ तक जानते हैं एक एक को। उन्होंने अपनी जानकारी के विषय में जो जानकारी बतलाई उसके आगे का रास्ता महाराज ने उसे बतला दिया। ऐसे दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, सबको अपने कल्याण का मार्ग बतला करके सबको एकदम संतुष्ट कर दिया और सभी एक प्रकार से वह मुक्त हो गए। तो इस प्रकार से राजा लोग जो है ज्ञान जग करते थे, यही ज्ञान जग है, ज्ञान की चर्चा कर करके और उसकी मुक्ति कर देनी ये एक महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे ऐसे राजा हमारे देश में हुए, और भी देखते हैं कि राजाओं के विषय में, ब्राह्मणों के विषय में, वैश्यों के विषय में एक राजा ऐसे हुए कि जो इनसे भी बढ़कर के हुए, जिन्होंने लाखों करोड़ों का उद्धार किया। जैसे उस दिन आपको बताया था राजा कीर्तिमान की बात, सब यात्री उन्हें नहीं सुना होगा। तो एक कीर्तिमान नाम का राजा हुआ, सारे अपने भूमंडल के बीच के वहां इतना भक्ति का प्रचार कर दिया कि सब भगवान के परम धाम को जाने लगे। सारी पृथ्वी पर उनका राज था, वो चक्रवर्ती राजा था, और सारी पृथ्वी पर भूमंडल के बीच के वहां उन्होंने समझो कि ईश्वर की भक्ति करने का आदेश दिया और सबको भगवान की भक्ति में लग गया, सब भगवान के परम धाम को जाएंगे। यमराज के द्वार के ऊपर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं, और पहले के जितने जो नरक में पड़े थे यम की यात्रा के मां जो थे, वो यात्रा भोग भोग करके उस समय होती आगे दूसरी योनियों को चले गए। अब यमराज सोचने लगा कि पहले के तो सब यातना भोग करके विदा हो गए, और नया कोई एक भी आया नहीं, अब तो निकमा ही हम बैठे। तो ब्रह्मा जी के पास में गए कि महाराज मेरी प्रिया स्थिति है, रोजगार बिल्कुल नहीं, आप हमारे को इस काम के लिए क्यों बैठा रखा है, दर्द का सर क्यों करते हैं, एक भी कोई प्राणी जो है तो हमारे यमलोक में नहीं आता, और हमारा सारा यमलोक खाली हो गया। पहले के थे सब अपने दंड भोग करके चले गए, नया कोई आया नहीं। क्यों बोलो, एक कीर्तिमान नाम का राजा हुआ पृथ्वी के ऊपर, अभी मौजूद है, तो वो उपदेश देकर के सबका उद्धार कर देता है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा चलो भगवान विष्णु के पास। विष्णु के पास धर्मराज को लेकर गए और कहा भगवान विष्णु से ये धर्मराज हमारे पास आया, ये कहता है कि या तो कोई मुझे काम बतलाओ और नहीं आपका चार्ज लो। हमारे तो अब ये कि नहीं है तो उसका काम तो कुछ है नहीं, तो निकम्मा कर जाए क्यों। बोले क्या बात है, तो बताया कि देखो कीर्तिमान नाम का अभी वर्तमान में राजा है और उसके राज में एक भी मनुष्य यम के लोग में नहीं जाता, सब आपके परम धाम में आ रहे हैं। तो कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जिससे यमराज कहता है कि मेरे लोगों में भी लोग जाने लगे। तो विष्णु भगवान ने कहा कि भैया राजा कीर्तिमान की 10,000 वर्ष की आयु है और उसको 8,000 वर्ष बीत गए और अभी 2,000 वर्ष और रहे हैं, तो 2,000 वर्ष तक तो तुम्हारे यमलोक में एक भी प्राणी नहीं जाता। जब 2,000 वर्ष बीत जाएंगे और तो ये जो राजा है चला जाएगा, फिर दूसरा राजा आवेगा, उसके राज के मां तुम्हारी बारी आओगी, तुम्हारे लोग को ऐसो बहुत से जाएंगे। इतने दिन तू अपना चुप रहो 2,000 वर्ष तक, तो बेचारा चुपचाप रहा। तो हम लोगों के ख्याल करना चाहिए 10,000 वर्ष पर्यंत और दुनिया के वहां जितने आदमी हो सबका ही कल्याण होता रहे, कितनी आश्चर्य की बात है। इस वक्त में वर्तमान के बीच के वहां अपने सारे देश में करीब 3 अरब आदमी हो सकते। अब ये 3 वर्ष ये 3 अरब आदमी मरे जन्मे मरे जन्मे तो कितने अरब खरब हो जाते जिसका कुछ ठिकाना है। तो ये बात राजा कीर्तिमान के राज्य में थी कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलता कि जो भगवान के परम धाम को जाने के लायक न हो। तब ये सब परम धाम के जाने के लायक थे, सभी जाते थे। तो हमारे इस पृथ्वी के ऊपर इस भारतवर्ष के वहां ऐसे ऐसे राजा महाराज हो गए जिनकी कथा का श्रवण करने से आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती। ऐसे और भी बहुत से राजा लोग हुए हैं, तो हम लोगों को भी उसी प्रकार बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। और ऐसा पुरुष बन सकता है कि जो दुनिया के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। सर्वस्व अर्पण करने का नाम ही विश्व जीत जगह, तो विश्व को जीत लेता है। तो अपना सर्वस्व परमात्मा के समर्पण वास्तव में कर देता है, उसके शरीर के द्वारा होने वाली क्रिया भगवान ही करते हैं। तो ब्राह्मणों के मां माने ऋषियों में मुनियों में बैसों में राजाओं में होते हैं, ज्यादा कथा मिलती है राजाओं की और ब्राह्मण बैसों की शूद्रों की कथा कम है। तो बात यह है कि इस विषय के बाद उन लोगों की कोई दिलचस्पी थी। भगवान को हर समय के बीच के वहां हम लोगों में निगरानी रखते हैं, बड़ी कृपा है भगवान की हम लोगों की, पर नहीं मालूम क्या दशा होती। तो ऐसा बड़ा भारी मौका भगवान ने हमको दिया है। हम लोगों को उत्तम देश में जन्म हुआ, उत्तम काल में उत्तम जाति के मां और माने उत्तम योनि, उत्तम धर्म सभी उत्तम और उत्तम संघ, ये सब मिलकर के यदि अपने आत्मा का उद्धार न हुए तो हमारे लिए बहुत ही शोक की बात है। तुलसीदास जी कहते हैं जो न तारे भव सागर है नर समाज ऐसे पाए। तो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जायसिया जो नर इस प्रकार के संयोग को पाकर के और जो भवसागर के पार नहीं जाता है वो मूर्ख है और निंदा का पात्र है और आत्मा की हत्या करने वाले की जो दुर्गति हुई है वो उसकी दुर्गति होती है। तो हम लोगों के लिए सब प्रकार की सुगमता है, एक उत्तम देश उत्तम काल कलयुग के वहां बहुत ही शीघ्र उद्धार हो जाता है, तो कैसा मौका मिला हम लोगों को। विष्णु पुराण के मां पद्म पुराण के मां ये सब बात बतलाई है, इस सतयुग में 10 वर्ष साधन करने से जो कार्य की सिद्धि होती थी त्रेता में 1 वर्ष में होने लगी, द्वापर के मां 1 महीने में होने लगी और कलयुग में 8 पैर में यानी 1 दिन के मां ऐसा उद्धार हो सकता है। यदि माने ध्रुव जी ने जिस प्रकार से भगवान की भक्ति करी इस प्रकार से कि मनुष्य यदि 1 दिन भी आपने धारण करे तो उसका उद्धार हो सका है, क्योंकि सतयुग के वृक्ष के मां 10 वर्ष साधन करने से जो कार्य की सिद्धि होती थी वो कलयुग में 1 दिन के मां होने लगी। तो ध्रुव जी ने 5.5 महीना साधन किया, भगवान की प्राप्ति हो गई। हिसाब लगाने से 1 दिन से भी और जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जानी चाहिए, ऐसा मौका है। दूसरी बात यह कही कि भी कलयुग है तो अवगुणों की खैन है, इनमें एक बड़ा भारी गुण है, वह यही गुण है कि ईश्वर की भक्ति करने से कलयुग में शीघ्र उद्धार हो जाता है। तीसरी बात ये कही कि सतयुग के मां परमात्मा का ध्यान करने से मुक्ति होती है, त्रेता के बीच के मां जग करने से, द्वापर में पूजा करने से और कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही मुक्ति हो जाती है। कथा कीर्तन करी से भवसागर की नाम, तो सब प्रकार का ये मौका है, सो बतला है विष्णु पुराण के छठे अंश की दूसरे अध्याय। तो कैसा मौका मिला, ऐसे मौके को पाकर के ईश्वर संसार में हम लोगों को जन्म लेना पड़े तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, दुख की बात है, लज्जा की बात है। अब तो मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए कि पहले ये काम करना फिर दूसरा काम, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया तो फिर क्या किया। यदि ऐसे ही अपने कल्याण से वंचित होकर यहाँ से जाएंगे तो हमारी बड़ी भारी सो दुर्दशा होगी, भटकते फिरेंगे। तो जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर मिला है वो काम आपने शीघ्र शीघ्र जल्दी बना लेना चाहिए। तो यही सार बात है, वो शीघ्र ही बन सकता है केवल मात्र हर वक्त भगवान को याद रखने से और कुछ भी नहीं। कले युग समय युग आन नहीं जो नर करे विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास सिया, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। यदि कोई विश्वास करे तो भगवान का गुणानुवाद विमल जो भगवान का गुणानुवाद उसके गायन करने से बिना ही प्रयत्न बिना ही आयास के मनुष्य का कल्याण हो सकता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण न श्रीमन नारायण नारायण न श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुक्त बंसी वाला।